ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को फिर से ये पाठ पक्का कराया है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि अभी तक हम सब उस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं, बार बार भूल जाते हैं, उस स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं। तो बाबा तो जानते हैं, इसलिए बाबा बार बार बच्चों को पक्का कराते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। दूसरी बात बाबा ने कही कि जब रावण आता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, क्या लाता है? बाबा ने कहा भक्ति भी साथ में लेके आता है। दुख तो लाता ही लाता है, क्योंकि जब रावण राज्य शुरू होता है तब बाबा को याद करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि रावण अपने साथ भक्ति भी लेकर के आता है, लेकिन जब बाप आते हैं तो ज्ञान लेकर के आते हैं। तो बाप क्या करते हैं, भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि देखो, तुम बच्चे जब बाप को याद करते हो तो वो कौन सी स्थिति होनी चाहिए। जब सेंटर पर है तो उस समय समझते थे कि मधुबन में मुरली चल रही है, श्री बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। तो जिस तन में आए वो तन तो सामने आएगा ना। कई कई ऐसे भी बच्चे कहेंगे उनको क्यों याद करें। बाबा कहते ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन तन तो सामने आता है कि उस तन के बिगड़ तो बाबा आ नहीं सकते हैं। जैसे किसी के पास जाएंगे, घर में जाएंगे, मिलना मालिक से है, लेकिन उसका मकान क्या है वो तो जानकारी रहती है ना, नहीं तो मिलेंगे कैसे मालिक से, उसके मकान को पहले देखेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, सभी बाबा कहते बाप दादा, और ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते हैं, और शिव बाबा को ही याद करना है। अब हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 9 नवंबर 2024, मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप आया है, तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। आज का प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं। ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं, इसका उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये विनाशी शरीर है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। कैसे अपने आप को याद करना है, तो पहली बात क्या, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है, पैदा होंगे बिल्कुल छोटा सा, धीरे धीरे बढ़ता है, आत्मा तो वही है। तो बाबा कहते शरीर ही छोटा बड़ा होता है, ये आंखें शरीर में है, लेकिन इससे देखने वाली मैं आत्मा। आज बाबा किसे याद करा रहे आत्म स्वरूप में रहने के लिए, ये आंखें देखने वाली हैं, लेकिन इससे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्मा को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक शरीर में नहीं आऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन कौन करते हैं, अब पक्का करना, ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते, नहीं तो जिनको पूरा ज्ञान नहीं ना बार बार पूछते रहेंगे बाबा हम बाबा को कैसे याद करें, हम अपने को आत्मा कैसे समझे। बाबा ने कहा जिनको ज्ञान है वो किस प्रकार से चिंतन करते हैं, वो बाबा ने बताया ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति, ये किसने कहा, आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर के द्वारा, आत्मा बिना शरीर के तो बोल नहीं सकती ना, तो बाबा कहते अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर के द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है, शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, जब पैदा होता है कितना छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जाकर देखो तो कितना बड़ा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भले छोटा भी है तो भी आत्मा तो जरूर, आत्मा से तो जरूर बड़ा है। शरीर छोटा भी है उसके अंदर आत्मा है, शरीर बड़ा है आत्मा छोटी है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है, बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, बचपन की फोटो देखते कितने छोटे थे, कैसे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब कितने बड़े हो गए हैं। तो बाबा कहते आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई भी काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है, बोलने चलाने वाली भी आत्मा ही है, वह इतनी छोटी सी बिंदी है। पक्का हो रहा है ना लेसन, कैसे बाबा बता रहे आत्मा क्या है शरीर क्या है, वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होगा लेकिन आत्मा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, वह कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है, विनाश को भी नहीं पाते। आत्मा अविनाशी है, ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, विनाश को भी नहीं पाती है। अब ये परम आत्मा बाप ने समझाया है कि मैं भी अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है, उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ, ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आत्मा के बारे में जो विचार सागर करते हैं तो बाबा ने कहा ये सब बातें जो है अभी चिंतन में लाते हो, आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे परंतु फिर कोई नहीं कहा कि तुम परमात्मा, एक तरफ कहा कि हर एक के अंदर आत्मा है और दूसरी तरफ ये कह देते थे सब में परमात्मा, फिर कोई नहीं कहा परमात्मा, तो तो अपने को परमात्मा समझने लगे। फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो, मैं किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो किसने बताया? भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों में सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं, वहां तो कोई ये भी नहीं कहेगा तुम आत्मा हो, वहां नेचुरल ज्ञान रहता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम आत्मा वो तो ज्ञान नहीं है ना, तो बाबा कहते सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चलती, आत्मा शरीर में है तो शरीर बोलेगा चलेगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा को बाप आकर समझाते हैं। निराकाश बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं, आंखें मुख नाक कान सब शरीर में है, लेकिन जब आत्मा प्रवेश करती है तब तो वो एक्शन में आती है ना। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं, अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है, ज्ञान नहीं है, भले ही आंखें हैं लेकिन अज्ञान है ना। बाप आते ही है आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। आज कौन सा लेसन पक्का करा रहे बाबा बताओ, कौन सा लेसन है आत्मा का? जैसे कोर्स कराते ना तो पहला लेसन देते हैं, आत्मा के बारे पूरा ज्ञान देते हैं ना, तो आज बाबा फिर से वो पक्का करा रहे। ज्ञान तो है लेकिन उसको कैसे धारण करना है वो बाबा बार बार वही बात बता रहे हैं। आत्मा कर्म करती है शरीर के द्वारा। अभी तुम समझते हो कि बाप ने भी ये शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं, सारे नाटक की भी नॉलेज देते, अपना भी राज सुनाते हैं, आत्मा का भी सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज सुनाते हैं और सारे चक्र की नॉलेज भी सुनाते हैं। आगे तुमको भी कुछ पता नहीं था, हाँ जरूर ये नाटक है, ये कहते थे नाटक है, लेकिन नाटक में कौन पार्ट बजा रहे वो तो नहीं जानते ना। हाँ नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको ही मिला है, बाकी तो सब है भक्ति। बाप आकर तुमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं, आगे तुम क्या थे? भक्ति तो आत्मा थे, ऐसा शब्द याद भी नहीं होगा किसको। बाबा हमेशा कहते तुम भगत थे, लेकिन तुम भक्ति तो आत्मभक्ति करते रहते, ज्ञानी तो नहीं थे भक्ति करते रहते थे। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तू आत्मा भक्ति करती थी, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। देखो बाबा कैसे बात भी आत्मा से करे, तुम भक्त आत्मा थे, तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो, भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है तो ज्ञान का भी पार्ट, भक्ति नहीं होगी तो क्या हालत हो जाएगी। भक्ति का पार्ट अपना है और ज्ञान का पार्ट भी अपना, दोनों ही पार्ट है। तो बाप ने समझाया है भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो हम कितनी भक्ति करते थे, कितनी भक्ति किया है जिन्होंने बहुत भक्ति की, हाथ खड़ा करो, थोड़ी ही है ना, और बाकी ने थोड़ी थोड़ी की है, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया वो कोई होगा नहीं, थोड़ी तो की है, कभी मंदिर गए गए कुछ गए, बाकी वो तो होंगे ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति करते धक्का खाते रहते हैं, बाप को ढूंढते थे, अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते। इतना ढूंढा इतना ढूंढा, मिला तो कुछ नहीं ना, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना भक्ति में, फिर नीचे उतरते आते ना, फिर तमो प्रधान बनते। झूठे काम करना छी छी, बाबा को अच्छा नहीं लगता था, कोई भी झूठ बोलता है क्या करता है गलत काम करते ना, तो बाबा किसी झूठे काम करना जैसे कि छी छी करना है, झूठे काम करना छी छी होना होता है। पतित भी बन गए, ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, पावन तो बने ही नहीं ना, पावन होने के लिए बल बहुत कुछ किया लेकिन बने तो नहीं ना, ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे, ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से मिल नहीं सकते, पावन बनेंगे तब तो भगवान से मिलेंगे ना। भगवान को तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ, पतित ही भगवान से मिलते हैं। भगवान से कौन मिलेंगे, पहले जो पतित बन चुके हैं वही आके मिलते हैं, फिर जाकर के पावन बनते हैं। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए, पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं है, सचमुच में थोड़ी लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, पतित बने तो बाबा आया पावन बनाने के लिए, जब पावन बन जाते तो बाबा थोड़ी वहां आता मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं सचमुच में थोड़ी लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है, भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह न सके, बाप तुमको पावन बनाकर फिर क्या करते, बाप पावन बनाकर, बाबा कहते बाप गुम हो जाते, बाप जाके परम धाम में बैठ जाते हैं, सचयुग में पता ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए कहेंगे गुम हो जाते हैं। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, उनका पार्ट भी देखो ड्रामा में कितना वंडरफुल है, जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। कईयों को साक्षात्कार होता लाइट का, कहेंगे लाइट देखा लाइट देखा, क्या देखा लाइट देखा, लेकिन आत्मा को देखा वो नहीं समझते, लेकिन क्या देखा किसकी आत्मा को देखा वो तो नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं भल साक्षात्कार होता है तो भी समझ नहीं सके, और तो सबको समझ सकते हैं ये फलाना है ये फलाना, साक्षात्कार में देखेंगे लाइट देखेंगे तो समझ नहीं सकेंगे ना, बाकी तो समझते हैं। अच्छा याद करते हैं, चाहते हैं कि फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे भगत है किसी का राम का पुजारी तो सोचेगा कि राम का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन मिला क्या, बस टेम्परेरी खुशी मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं समझते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा चैतन्य में देखते हो फिर क्या, चलो साक्षात्कार में देखा लेकिन क्या मिला क्या प्राप्ति हुई, साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा, अल्प काल क्षण भयंकुर सुख की आशा पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्प काल क्षण भयंकुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी वह मिला, भक्ति में नौदा भक्ति करते हैं ना, इतना भक्ति करते हैं कि हमको एक बार साक्षात्कार हो जाए, हो भी जाता है साक्षात्कार किया उसे एक सेकंड के लिए दो सेकंड के लिए, फिर बाद में तो नहीं कर सकते तो गुम हो जाएगा। साक्षात्कार की चाहना थी वह मिला, बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। अंतर भक्ति और ज्ञान में, यहाँ पर है पतित से पावन बनना, पावन बनेंगे तो देवता बनेंगे, और वहाँ केवल साक्षात्कार करते हैं, पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, समझते है कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो मनुष्य तो अंधेरे में है ना, कहाँ लाखों करोड़ों वर्ष, कहाँ 5,000 वर्ष। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो अंधेरे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधेरा, ज्ञान कोई में है ही नहीं, कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता है, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है। रावण आया क्या लाया, क्योंकि दुखी हुए तो भगवान को याद करते ना, रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है, रावण के साथ भक्ति और बाप के साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी तो मिल नहीं सकता, वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान ही नहीं देते हो, ज्ञान है ही नहीं, समझ है ही नहीं, और ये ज्ञान बाकी है, बाकी ये तो ज्ञान नहीं है ना आत्मा परमात्मा का। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान नहीं देते हो, दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं तो क्यों देंगे, दरकार ही नहीं है, वह हम आत्मा का बाप है। और वे कहते हैं कि नहीं परमात्मा, बाबा कहते बिगड़ कोई बात नहीं करते हैं, ये भी तुम बच्चे समझते हो, तुम कहते हो, बाबा कहते देखो कैसे हालत हो जाती है जब बाप को भूलते हैं ना, तो बाप को गाली देने बिगड़ कोई बात ही नहीं करते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो, तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो हम आत्माओं का बाप है। बाहर वाले भक्ति वाले क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी, लेकिन तुम बच्चे कहते ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो आत्माओं का बाप है। और वह कहते कि नहीं परमात्मा तो ठिकर भीतर में है, तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता, समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है, भगवान के कितने नाम रख देते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर मनुष्यों के भी नाम बदलते हैं, कई तो ऐसे कि भगवान के नाम मनुष्यों पर रख देते हैं लेकिन कर्म वैसे नहीं है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है, पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और ये है आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छीछिए, कहाँ देवता इतने ऊंच और कहाँ आज के मनुष्य की हालत क्या है, बाबा कहते बिल्कुल छीछी हैं। गुरु नानक ने भी कहा असंख्य चोर, कहते हैं ना उन्होंने कहा असंख्य चोर हरामखोर, ऐसे बोला हुआ, क्योंकि आज कितना भी कहे कि मैं नहीं हूँ लेकिन अवगुण तो है ना, मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट गएंगे, तुम ये क्या गाली देते हो, भक्ति करेंगे या अपने आप को निर्गुण कहेंगे, अपने आप को पापी नीच कहेंगे, अगर उसको आप कह देंगे नीच हो तो कहेगा तुम मेरे को गाली देते हो, अच्छा मैं देखता हूँ कैसे तुमको बताता हूँ, फिर वो बदले की भावना भी आ जाती है। तो बाबा कहते मनुष्य है, कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम ये क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं ये सब है आश्रय संप्रदाय, तुमको क्लियर कर समझाते हैं, वह राम संप्रदाय और वह है राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी हैं और रावण राज्य में सब विकारी हैं, इनका नाम ही है वैशाल्य, रावण राज्य विकारी दुनिया, वैशाल्य दुख है, इनका नाम ही है वैशाल्य। रो रो नरक है ना, इस समय के मनुष्य विषय वैतारणी नदी में पड़े, ऐसी हालत है, गोता खाते रहते खा दम ही घुट जाता है। तो बाबा कहते इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, मनुष्य जानवर आदि सब एक समान। मनुष्य की हालत क्या हो गई, जानवर फिर भी वफादार होते हैं, फिर भी मदद करते हैं, लेकिन मनुष्य तो क्या करता है। तो बाबा को कहना पड़ता है कि मनुष्य और जानवर एक समान है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है, पांच विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवता सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में कौन रहते हैं, है मनुष्य लेकिन एक्टिविटी क्या है, असुर जैसी है। तो बाबा कहते देवता सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर हैं। असुरों की निशानी क्या है, असुरों की निशानी पांच विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। पूरा सृष्टि चक्र का मनुष्य की हालत क्या हो गई है, बाबा बिल्कुल एक एक बात क्लियर कर बता रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला, कोई भी कला नहीं है, सबकी कला काया चट हो गई। जब कभी कोई बात नहीं समझता ना, उसको क्या कहते, कितना समझाओ नहीं मानता है, नहीं सुनता, उसको क्या कहेंगे, तुम्हारी कला काया चट हो गई क्या, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया जो कुछ भी नहीं समझते हो। तो अभी मनुष्य की हालत भी क्या हो गई है, सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बाप आते ही हैं आसरी पुरानी दुनिया को चेंज करने। किस लिए आते हैं बाबा, एक तो बच्चों को पति से पावन बनाने, बच्चों को वर्षा देने, देवता बनाने, आसरी पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। रावण राजे वैशाली को शिवालय बनाते, बाबा आके क्या करते हैं, रावण राजे वैशाली को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यही नाम रख दिए, क्या नाम रखा, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़ी ये नाम थे। बाबा आते हैं त्रिमूर्ति का ज्ञान देते हैं और देखो उसकी यादगार में क्या होता, तो उनको पता नहीं होता है, त्रिमूर्ति रोड लिख दिया, त्रिमूर्ति हाउस बोल दिया, उनको ये भी पता नहीं था, उन्होंने यहाँ नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़ी ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए, ये सारी दुनिया किसकी है, परमात्मा की है ना, परमात्मा की दुनिया है, जो आधा कल्प पवित्र और आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है, तो उनकी ये दुनिया हुई ना, क्रिएटर बाबा है, सारी दुनिया उनकी है, और बाबा तो पावन दुनिया स्थापन करते हैं, धीरे धीरे पतित हो जाती है, क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं ही बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। सारी दुनिया का मालिक कौन, बाबा, चैतन्य भी वही है, बीज रूप भी वही है, ज्ञान का सागर, मेरे में ही सारा ज्ञान है और कोई में है नहीं। तुम समझ सकते हो कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप में है, बाकी सब हैं गपोड़े। क्या क्या बातें सुनाते रहते हैं, ये है वो है, परमात्मा के लिए क्या सुनाते हैं, सृष्टि के लिए क्या सुनाते हैं। तो बाबा की तुमको नॉलेज नहीं है, जो भी सुनाएंगे तो गपोड़े ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम समझ सकते हो कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में है, बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, कौन सा गपोड़ा करते हैं, कि परमात्मा सर्वव्यापी है, जिसके लिए बाबा कहते हैं बाप भी उलहना देते हैं। क्या उलहना देते हैं? को मैंने तुमको इतना ऊंच बनाया, सब कुछ दिया, और तुम क्या करते, मेरे को ठिकर विटर में डाल दिया। तो बाबा कहते मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलहना देते हैं। तुम मुझे ठिकर बिट्टे, तुम मुझे ठिकर बिट्टर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। बाबा को भी उलहना देना पड़ता है कि तुमने क्या किया, ठिकर बिट्टर तो था, कुत्ता बिल्ली चूहा पता नहीं क्या, सब में कह देते कि भगवान है। तो बाप भी उलहना देते हैं, तुम मुझे ठिकर बिट्टर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। जब कोई गलत काम करता है तो उसको बताना पड़ता है कि देखो तुमने क्या क्या किया, देखो तो सही तुम्हारी हालत क्या हो गई। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है, नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कलप से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। ये भी बच्चों को समझाया है, पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बना दे। इतना ऊंच बाबा ने बनाया, फिर पुजारी बनते हैं तो पहले पहले क्या करते, शिव बाबा की पूजा करते। जो शिव बाबा तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते। अंतर, बाबा पुजारी से पूज्य बनाते और रावण पूज्य से पुजारी बनाते, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि ये सब नाम है ना, दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते। दशहरा जब मनाते जलाते उस समय भी क्या है, बाहर से बुलाते लोगों को, कई देशों से आते लोग देखने के लिए। और मैसूर में जब दशहरे का त्योहार होता है वो लोग तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, कितने कंट्रीज के लोगों को, वीआईपीस को बुलाते। तो बाबा कहते हैं दशहरा जब मनाते तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। देवताओं को कितनी निंदा करते हैं, देवताओं की कितनी निंदा करते हैं, ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। देवताएं कितने ऊंच महान पवित्र, लेकिन उनके बारे में भी क्या क्या कह देते हैं। तो बाबा कहते ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं, जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात है नहीं, वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह भी कुछ नहीं। ड्रामा बनाते रहते ना, कभी रामलीला करेंगे कभी कुछ करेंगे। बाबा कहते ये जो करते हैं वो रियल नहीं है, वास्तव में रियलिटी तो है नहीं ना। वैसे ये जो खेल कूद आदि करते हैं वे कुछ भी नहीं है, ये सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आश्रय मत कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते। एक ने कहा सबने कहा ठीक है, फिर उसी को ही चालू कर देते हैं, जैसे सब बन जाते हैं। इसको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते, अब आदत ऐसी होगी बात करेंगे पहले गाली देते, गाली दिए बिना बात ही नहीं करते, बात बात में गाली देते रहेंगे, बात बात में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलते रहेंगे। तो बाबा कहते फिर क्या कहेंगे, डेविल वर्ड कहेंगे ना, सब एक दो को गाली देते रहते। तो बाप समझाते हैं बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, अभी तो जानते हो कि बाबा यहाँ आया हुआ। बाबा बच्चों के सामने बैठे हैं तो बाबा उनको कहते थे कि बच्चे बाप को कहाँ याद करना है, अभी बाबा सामने है। फिर बाबा हमेशा उनको पक्का करते थे कि बाबा कैसे हैं आपके सामने, अभी तो जानते बाप आया हुआ है, तुम ऊपर में नहीं समझते हो, तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। बाबा ने कहा ना निमंत्रण दिया बुलाया तो मैं क्या करूंगा, किसी तन में आऊंगा ना, तो तुमने ही बाप को बुलाया है इस तन में। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान। वैसे भी भक्ति में भगवान को याद करते ना, नेचुरली उनका मुंह ऊपर की ओर जाता है। लेकिन हम बच्चे याद करते हैं तो हमारा क्या होता है, सामने बाबा के सामने फेस जाता है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को ऊपर मानते थे, हे भगवान। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, कहाँ याद करते हो? क्या कहेंगे, बाबा हमारे सामने है ना, अभी बाबा सामने है, बाबा की मुरली है, सुनाने वाला तो बाबा ही है ना। क्या बैठकर करते हो? तुम जानती हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, ऊपर में तो है ही नहीं। ऊपर से जब आता मुरली चली तो बाबा उस समय तो ब्रह्मा के तन में है, और बाबा तो बहु रूपिया, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी सारे विश्व का चक्कर लगा रहे, कभी बच्चों के सामने, कभी बच्चों के साथ चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऊपर बैठकर क्या करते हो, क्या करेंगे? यहाँ आया हुआ है तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ ही तो याद करेंगे, हम बाबा के सामने हैं, बाबा हमारे सामने हैं। भगत ऊपर में याद करेंगे, तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। अभी हम क्या कहेंगे, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा हमको ज्ञान सुनाया। तन तो जरूर चाहिए, कहाँ भी तुम बैठेंगे तो तुम यहाँ याद करेंगे, ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़ेगा। फिर कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते, जब अहंकार आ जाता है ना कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ तो क्या होगा, फिर ना भगवान को मानेंगे ना ब्रह्मा को मानेंगे। उस समय भी कई ना कोई ऐसे आ जाते थे, ब्रह्मा क्या, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। अभी भी कई ऐसे ज्ञानी अपने को समझते हैं कि बाबा क्या कहते हैं, बड़े दादियां क्या कहती है, सुनना ही नहीं है, सब कुछ हम जानते हैं। तो बाबा भी क्या कहना पड़ता है, कई ऐसे कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा को याद ना करो, ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? शिव बाबा किस तन में आएगा, तन तो सामने आएगा ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तन तो लेना पड़ेगा ना। उनकी अपनी आत्मा है, शिव बाबा को इस तन में प्रवेश करना पड़ता, शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है कि मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है तो कैसे समझाएंगे। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्मा रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम के सुप्रीम बाप है, सब आत्माएं जो है उस ब्रह्म लोक में रहने वाले, वो रहने का स्थान है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है, शांति धाम बाबा बताते कितना मीठा है, जिसे नाम लेते शांति आने लगती है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाबा जी को कैसे धीरे से ऐसा समझाते हैं प्यार से कि कैसे हमें वो याद करना है। हम असल के रहवासी ब्रह्म महातत्व के हैं। अब क्या बताया, ब्रह्म महातत्व रहने का स्थान है, तो गलती से उन्होंने अपने को ब्रह्म कहना शुरू कर दिया। बाबा ने क्या बताया कि हम ब्रह्म तत्व में रहने के असल वासी हैं, वहाँ के निवासी हैं। असल के रहवासी ब्रह्म महातत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं, जब ज्ञान है तो भक्ति की नॉलेज है, जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहती हैं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। पुरानी दुनिया जिसमें असुर रहते हैं उसको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सत्युग में तो तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा, सत्युग में होंगे हम कैसे देवता बने, हमको इतना सुख कहाँ से मिला, कुछ भी पता नहीं रहेगा। सत्युग में तो तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा, अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ भी पता नहीं है। संगम युग पर बाप समझाते हैं, जब नई दुनिया में होंगे तो इस पुरानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं। बाबा नई के लिए नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन वो कितनी अच्छी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन है तो नहीं ना। अभी अब पुरानी दुनिया में हो तो नई दुनिया का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं। वह लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कलप कलप आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते। नहीं तो ये झाड़ जो है कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा आए, बाबा ने ये झाड़ का राज समझाया और झाड़ का जो चित्र बनवाया सारी दुनिया के लिए एक बड़ा ऐसे लगने लगा कि ऐसा सुंदर चित्र कोई भी दुनिया में बना नहीं सकता है। और ये चित्र की इतनी बड़ी वैल्यू रही। और आपको पता है जब पहली बार दादी प्रकाश मणि, दादा आनंद किशोर और रतमी दादी जापान में गए थे, बाबा ने ये चित्र बनवा के दिया था। इस चित्र को देख कर के वो लोग इतना खुश हुए, इतना खुश, इतना बड़ा आर्टिस्ट कौन हो सकता है, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। तो वहाँ लोग तो इस चित्र को इतना डिमांड किया और वहाँ पर ही कितने चित्र फिर से छपवा के दिए। तो ऐसी नॉलेज तो कोई दे नहीं सकता ना। बल कहेंगे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, लेकिन वो है कैसा वो तो कोई नहीं जानता ना। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाप इस संगम युग पर कलप कलप आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, और ये चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है, अब बाबा बच्चों को समझाते और तुम्हारा धंधा ही है ये समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बाबा कहते थे कभी कभी शुरू में जब आते थे ना तो ग्रुप में आते थे, बाबा कहते थे अलग अलग बिठा के समझाओ, क्योंकि एक को समझाएंगे, एक ने प्रश्न किया दूसरा चार प्रश्न करेगा। और अभी बाबा क्या कहते, इतने लोग हैं कि को कहाँ समझाओगे, ग्रुप में समझाओ, बहुतों को इकट्ठा समझाओ। अभी तुम बहुतों को समझाते हो, बहुत समझते हैं ये मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर भी और अच्छी रीति से बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है, इस चक्कर की ड्यूरेशन कितनी है, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये भी टॉपिक हुई ना, शुरू में जब ज्ञान सुनाना होता था बच्चे कहते थे बाबा हम क्या टॉपिक रखें, हमको समझ नहीं आता, हम कुछ क्या करें। तो बाबा उनको सिखाते थे कैसे टॉपिक रखना है, इस सृष्टि चक्र की ड्यूरेशन क्या है, आत्मा के बारे से कोई ना कोई टॉपिक बाबा उनको बताते रहते थे। तुम तो बाबा कहते हैं खेल की ड्यूरेशन कितनी है, तुम तो एक्यूरेट बताएंगे ना। ये भी टॉपिक हुई ना, हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको ये समझाया है, हम किसकी ग्लानी आदि नहीं करते। उनको समझाएंगे कहेंगे तुम लोग क्या बोलते हो, तो बाबा की तुमको बताओ कि हमको बाबा ने समझा वो सुना रहे हैं, सुनना सुनो नहीं सुनना सुनो, हम कोई ग्लानी थोड़ी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने हमको ये समझाया है, हम किसकी ग्लानी आदि नहीं करते हैं, हम बतलाते हैं ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक ही सतगुरु है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। बाबा ने बताया था बच्चों को, फिर बच्चों ने क्या किया, फिर मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट, सदगति दाता कौन, एक शिव परमात्मा, ऐसे ऐसे करके निकाले थे, तो लोगों को पढ़ने और समझने में इजी हो जाता था। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय और तो कोई दे नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के मुख्य सार से पहले आपको बता दें, आज शाम को हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी पांडव भवन में आएंगे। शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे तक शांति स्तंभ पर विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए सभी भाई बहनों को डबल विदेशी तो 6 बजे आ जाएंगे, हमारी मोहिनी दीदी 6:30 बजे के अंदर आएंगे, जिसके लिए सभी भाई बहनों को विशेष पहले से बता रहे हैं, टाइम पर ही शांति स्तंभ पर आकर के योग करेंगे। आगे की सूचना बाद में बताती हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना, दूसरा कोई चेंज नहीं करेगा, खुद को खुद चेंज करना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अलग कान सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है तो दोनों याद आने चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा का भी रूप सामने तो आएगा ना, याद शिव बाबा को करना, रूप तो सामने आएगा तो दोनों ही याद आने चाहिए। वरदान हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते भी हैं निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज है 9 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा, कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता युवा ट्रस्टी होकर रहो। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल तो मुराद हासिल कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता। कराने वाला करा रहा है तो कितनी प्राप्ति होती है, जब मैं कर रहा हूँ तो आत्मा में जितनी शक्ति उतना फल मिलेगा। कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, एक सही संकल्प व कर्म का हजार गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि आपको बताया था कि
शांति स्तंभ पे बैठे हैं ज्यादा है, 300 लोग विदेशी।
अच्छा, अभी एक और सूचना बता रहे हैं कि ज्ञान सरोवर से भी डबल विदेशी भाई बहने आएंगे शाम को योग के लिए। सभी डबल विदेशी भाई बहने शांति स्तंभ के अंदर बैठेंगे, बाकी जो अन्य भाई बहने हैं वो शांति स्तंभ के बाहर बैठ सकते हैं योग के लिए। और शाम को 6 से 7:30 बजे तक शांति स्तंभ पर योग का कार्यक्रम है, खास डबल विदेशी भाई बहनों के लिए, आप सबके लिए भी है, क्योंकि डबल विदेशी भाई बहनों की संख्या 300 से भी ज्यादा जा रही है। तो ये सब डबल विदेशी भाई बहने, क्योंकि उनको साल में एक बार आते हैं, बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है यहाँ बैठने का, आने का। मधुबन वाले अन्य हॉस्पिटल तथा सेवाधारी तो सारा दिन शांति स्तंभ के आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए फिर से बता रहे हैं कि सभी डबल विदेशी भाई बहने शांति स्तंभ के अंदर ही बैठेंगे, बाकी जो भाई बहने हैं शांति स्तंभ के बाहर इतना स्थान है वहां पर बैठ के योग करेंगे। खास मोहिनी दीदी जी आ रही हैं, वो 6:30 बजे के अंदर आएंगी, 6 बजे से योग शुरू हो जाएगा। डबल विदेशी भाई बहने शाम को 6 बजे से योग पर बैठ जाएंगे।
योगी जो बाहर बैठते रहेंगे इस पांडव भवन हिस्ट्री हॉल।
अच्छा, जिनको अगर कम कुर्सियां ना मिले तो वो क्या है, हिस्ट्री हॉल में और मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे। डबल फिर से बता रहे, ओनली डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो सब शांति स्तंभ में बैठेंगे और बाहर जो थल्ले पर कुछ भी बैठ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को स्थान नहीं मिलेगा वह हिस्ट्री हॉल और मेडिटेशन हॉल में बैठ के योग करेंगे। और अभी हम सभी योग में बैठेंगे और उसके बाद शीलू बहन डबल विदेशी भाई बहनों को आज सारे दिन का प्रोग्राम बताएगी।